अक्षित सब ठीक है कहते जाकर सोफे पर बैठ गया। कमल अक्षित की तरफ बढ़ा और नैना उसके लिए पानी ले आई। अक्षित ने पानी पीने से मना कर दिया और दोनों अक्षित की तरफ बैठ गए और बाह पर हाथ रखते हुए अक्षित की तरह देखा। तभी अक्षित सौम्या के बारे में सोचते हुए दोनों को सब बता देता है, कैसे वो सौम्या के घर गया, वहां क्या हुआ, क्या पता चला और कैसे वो अचानक वहां से चला आया। वो सब सुन कमल नैना दोनों हैरान थे। अक्षित की आंखों में नमी, आवाज में दर्द साफ दिखाई पड़ रहा था। उसकी बातें सुनकर कमल और नैना की आंखों में भी नमी उतर आई कि तभी कमल ने अक्षित को अपने गले लगा लिया और नैना अक्षित की पीठ पर हाथ रखते बोली, अक्षित सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होना ही होगा। इतना कहे अक्षित वहां से उठकर चल गया। कमल नैना दोनों उसे लेकर परेशान हो गए। कमल अक्षित के पीछे जाने लगा तो नैना ने रोक लिया, रहने दो, सौम्या को संभालने के लिए पहले इसे खुद को संभालना होगा। जज्बाती है ना अक्षित, तो ये तो होना ही था, सब ठीक इसे ही करना है और देखना ये कर भी देगा। अभी उसे अकेला छोड़ना ही ठीक है, बाकी हम उसके हर कदम पर उसके साथ ही हैं, तो टेंशन मत लो, जैसा चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। मल्लिका जी से मिलना अच्छा हुआ ना, पता चल गया, आगे भी जो करेंगे अच्छा ही होगा। कमल वापस बैठते हुए, हाँ यार, पर सौम्या ने जो सहा, जो हुआ, उस सब से वो कठोर बन गई है और उसकी कठोरता अक्षित को ठेस पहुंचा रही है। नैना हल्का सा मुस्कुराते हुए, इश्क आसान थोड़ी है, जिसने भी कहा है सही कहा है, इश्क में सब सहना पड़ता है, खुशियां ही नहीं दर्द भी बांटना पड़ता है, गुस्सा कठोरता सब झेलना पड़ता है, सोना आग में तपता है तभी निखार आता है, इश्क भी वैसा है, हर पड़ाव से गुजर कर ही उसका खुमार चढ़ता है। कमल उसे टेढ़ी नजरों से देखते हुए, तुमको बड़ा पता है, वैसे किसने कहा है और ये फिलॉसफी वाली बातें कहाँ से सीखी हैं? नैना ने उसके बाह पर हाथ मारा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जब किसी से प्यार होगा तब समझ आएगा कि जिसने भी ये बातें कही हैं सच कही हैं, झूठ नहीं। इतना बोल नैना वहां से चली गई तो कमल पीछे जाते बोला, कर तो लूं, पर मिले तब ना, जब तक मिलेगी मुझे पता भी नहीं चलेगा। दिल्ली, आक्षी अंकित जी और मंजू जी के साथ हॉल में बैठी थी, तभी अक्षित संध्या आ गए। हाई मॉम डैड, आक्षी ने हाथ हिलाते हुए कहा तो दोनों मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देते हैं। अंकित जी दोनों की तरफ देखते, आज मीटिंग सी ना तुम्हारी, कैसी रही? अक्षित कुछ नहीं बोला, सीधा वहां से ऊपर चला गया। संध्या उसे जाते हुए देख रही थी तो मंजू जी बोली, क्या हुआ संध्या, मीटिंग अच्छी नहीं हुई क्या? संध्या उनकी तरफ देखते हुए, नहीं मॉम, मीटिंग तो बहुत अच्छी हुई। आक्षी हैरान होते, फिर डैड मीटिंग का पूछते ही ऊपर क्यों चले गए, कुछ बोले ही नहीं? संध्या, पता नहीं क्या बात है, आज काफी बार नोटिस किया, परेशान सा दिख रहा था, पूछना चाहा तो मुस्कुरा दिया। आक्षी, आपको भी नहीं पता मॉम, आई मीन डैड ने आपको भी नहीं बताया वो टेंस क्यों है? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं बताया और ना मैंने ठीक से पूछा, सोचा घर आकर बात करूंगी, संध्या ने कहा। तो मंजू जी संध्या के बाह पर हाथ रखते हुए बोली, फिक्र मत करो, बता देगा, तुमको नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? अंकित जी, हाँ कोई परेशानी होगी तो दूर भी हो जाएगी। ये सुन संध्या ने हाँ में सिर हिलाया, मैं अक्षित के लिए कॉफी लेकर जाती हूँ और साथ में बात भी कर लूंगी, आप भी परेशान मत होना, आपको पता है ना अक्षित छोटी छोटी बातों को लेकर सोच में पड़ जाता है। अंकित जी मंजू जी ने हाँ में सिर हिलाया कि तभी आक्षी तपाक से बोल पड़ी, और क्या, उनको भाई की याद आएगी तब भी वो देवदास बन जाएंगे। ये सुनते ही संध्या ऊपर की तरफ भागी, ये देख अंकित जी मंजू जी आक्षी तीनों हैरान हो गए। मॉम को क्या हुआ? अंकित जी ऊपर की तरफ देखते, बिना बताए समझ गई अक्षित की परेशानी मंजू जी, और भाग पड़ी उसे संभालने और परेशानी भगाने। इस बात पर तीनों मुस्कुरा दिए। अक्षित अपने रूम में इधर उधर चलते हुए अक्षित को फोन लगा रहा था। उधर अक्षु बेड से सटकर जमीन पर बैठा बेड पर सिर रखे सौम्या के साथ जो हुआ उसको लेकर रो रहा होता है। मल्लिका जी ने जब उसे बताया तब तो उसने संभाल लिया था खुद को, पर अब उसका संभालना मुश्किल हो गया था। सौम्या ने जो सहा उस बारे में सोचते हुए अक्षु को तकलीफ हो रही थी। तभी उसका फोन बजा तो अक्षु ने फोन निकालकर उसकी तरफ देखा और डैड कहते अपने कान से लगा लिया। डैड, रुहासी आवाज में अक्षु का ऐसा बोलना सुनकर अक्षित के कदम वहीं थम गए। अक्षु, तभी अक्षु का उसे फूट फूट कर रोना सुनाई दिया तो अक्षित ने अपनी आंखें मूंद ली और एक हाथ की मुट्ठी बांध ली। जैसे ही संध्या कमरे में पहुंची अक्षित की मुट्ठी बंधी देख और फोन पर लगा देख वो दरवाजे पर ही रुक गई परेशान होते। अक्षु को रोता देख अक्षित का मन किया कि काश वो उसके पास होता इस वक्त और अपने सीने से लगा लेता, पर ऐसा नहीं था। तभी अक्षित ने आंख खोली तो उसकी आंख छलक गई। उसने अपनी आंखें पहुंची और खिड़की की तरफ जाकर बोला, अक्षु बस बेटा, बस संभालो खुद को, डैड साथ हैं तुम्हारे। तभी आगे से अक्षु ने कहा, आई नो डैड, आप हमेशा मेरे साथ हैं, देखिए ना, आप दूर हैं फिर भी पास हैं। डैड, आपको पता है क्या हुआ आज? वही जानना चाहता हूँ बेटा, बताओ बात क्या है जिस वजह से मेरे अक्षु की ये हालत हो गई? जो बात है सच सच बताना, तुम मल्लिका शेखावत से मिलने गए थे ना, क्या हुआ वहाँ? अगर उन्होंने मेरे बेटे के साथ गलत बिहेवियर किया है और वजह वो है जिसकी वजह से मेरे अक्षु की आंखों में आज आंसू हैं, तो छोड़ूंगा नहीं मैं उनको, अक्षित खिड़की के पर्दे को मुट्ठी में बीचते हुए बोला। ये सुन संध्या, जो अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखों में नमी उतर आई, पर वो अपने कदम अक्षित की तरफ नहीं बढ़ा पाई, क्योंकि वो जानती थी जितना अक्षित और अक्षु एक दूजे को समझते हैं उतना कोई नहीं समझता, और जब वो साथ होते हैं एक दूजे के तो वहां उसका होना जरूरी नहीं, वो एक दूजे के लिए काफी है। तो वो वहीं खड़ी रही। तभी अक्षित फिर बोला, बोलो ना अक्षु, और प्लीज पहले ये रोना बंद करो बेटा, यू नो दैट मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अक्षु ये सुन मुस्कुराया और अपनी आंखें पोंछते बोला, आई नो डैड, सॉरी डैड, और आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने आपके बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिसके चलते उन पर शामत आ जाए। बोलो, अक्षु ने अक्षित को जो हुआ सारी बात बताई और फिर बोला, सौम्या सही नहीं कर रही है ना डैड, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए ना। क्रमशः